समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर की आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जी हाँ, बीती बातों को पीछे छोड़ना ही अच्छा है। कब तक उन पुरानी चीजों को, उन पुरानी यादों को और उन पुरानी बातों को आप ढोते रहेंगे, कभी तो आपको आगे बढ़ना होगा। तो क्यों ना इस सुबह है हम जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें, टूटे तारों पर शोक मनाना छोड़ें और आगे की सुध लें। इसी के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन।
वेल हेलो एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल दिस इज शगुन चोपड़ा विद आकर्षिता। लेट्स डेल्व राइट अवे इनटू द फ्रेशनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर वील इक्विप यू विद ऑल द लेटेस्ट न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग टूडेज हिस्ट्री, दैट इज 28th August। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेडलाइंस।
चिली के विदेश मंत्री एल्बर्टो वैन क्लेवरेन कल रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और क्लेवरेन आज नई दिल्ली में दूसरे भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक करेंगे। चिली का प्रतिनिधिमंडल चिली भारत व्यापार कृषि शिखर सम्मेलन में भी भाग लेगा। इसके बाद ये मुंबई के लिए रवाना होंगे। लैटिन अमेरिका क्षेत्र में चिली भारत का प्रमुख भागीदार है। विदेश मंत्री क्लेवरेन की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा और आपसी सहयोग के लिए नई संभावनाओं को तलाशेंगे।
द ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हैज इनवाइटेड व्यूज एंड सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक, एनजीओज, एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। In an official statement, the Lok Sabha Secretariat said, those desirous of submitting written suggestions to the committee can send two copies, either in English or in Hindi, to Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, and they can also email to jpcwakf@sansad.nic.in. The suggestion should reach within 15 days from the date of the publication of the advertisement. The Waqf Amendment Bill, which was introduced in Lok Sabha during the budget session, was referred to the Joint Committee of Parliament for examination. The committee is scheduled to report on the bill to the House by the last day of the first week of the winter session of Parliament this year.
भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के उपचार की औषधियों की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। ये सेंसर स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सिस्टम है, जो उपयोग में सरल और किफायती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान ने बताया कि इस सेंसर की सहायता से शरीर में एल डोपा की सही मात्रा का पता लगाया जा सकेगा और उसके आधार पर पार्किंसंस रोग को नियंत्रित करने की दवा की आवश्यक मात्रा निर्धारित की जा सकेगी।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज कॉल्ड अ 12-आवर बंद इन वेस्ट बंगाल टुडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अट्रोसिटीज बाय पुलिस ऑन स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द अलेज्ड रीसेंट डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस इन कोलकाता। The protesters were demanding the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee and arrest of those involved in the rape and murder of a doctor at Arjikar Medical College and Hospital. The violence in Kolkata has been reported yesterday during a student march, Nabanna Abhiyan, called by the Chhatra Samaj. Meanwhile, the state government has said that it will not support the BJP called Band and will make all arrangements for maintaining normalcy.
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल बाढ़ की विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज त्रिपुरा का दौरा करेगा। इस दल में कृषि, वित्त, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रजेश पांडे ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली है। इनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गोमती जिले में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शरण ली है। जिला प्रशासन इन शिविरों में खाना, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं सहित राहत सामग्री का वितरण कर रहा है। श्री पांडे ने कहा कि गोमती और सिपाहीजाला जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के 6 दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 5 दल राहत कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा नागरिक रक्षा और आपदा मित्र के करीब 500 स्वयंसेवक भी राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ में अब तक 31 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं और 1 लापता है।
India has developed its own indigenous RT-PCR testing kit for Mpox. The Central Drug Standard Control Organization, CDSCO, has approved Siemens Healthineers IMDX Mpox Detection RT-PCR test for the viral disease. The test delivers result in just 40 minutes, significantly faster than traditional methods, which takes 1 to 2 hours. Now let's turn our attention to the sports world, where all eyes are focused on Paris, where the Paralympics Games 2024 will officially get underway in Paris today and will go on till 8th September. This is for the first time that France will stage a summer Paralympics. The country previously hosted the Winter Paralympics in the year 1992 in Tignes and Albertville. A total of 84 Indian para-athletes will compete at the Paris 2024 Paralympics. It is India's largest contingent in Paralympic history. India will compete in 12 of the 22 sports at Paris 2024, including debuts in para-cycling, para-judo and para-rowing. India's campaign will begin a day later in para-badminton, where Krishna Nagar will start his men's singles title defence. Avni Lekhra and Manish Narwal are also set to take aim in para-shooting. The spotlight will be on javelin thrower Sumit Antil, the Tokyo 2020 gold medalist in the F64 category and a world record holder. Bhavina Patel, India's first Paralympics medalist in table tennis, will play in the women's singles event. The Paris 2024 Paralympics will conclude on September 9 with the closing ceremony.
और आइए अब जानते हैं महानगरों का हाल। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं शगुन।
फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन चेन्नई। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज अर्ज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ऑल इंडियन फिशरमैन एंड देयर फिशिंग बोट्स फ्रॉम श्रीलंकन कस्टडी। At present, there are 116 fishermen and 184 fishing boats in Sri Lankan custody. The Sri Lankan Navy has also detained 8 Rameshwaram fishermen in Polk Strait. In his letter, Stalin stated that the alarming recurrence of such incidents had caused immense distress to the families of the arrested fishermen and further exacerbated the livelihood problems faced by the Indian fishermen. Their livelihood depends on these waters, and such arrests not only affect the well-being of the fishermen but also jeopardize the well-being of their families back home. Staying with Chennai, the advisor to the Ministry of Earth Sciences, P.K. Srivastav, said that India will sign the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, also called High Seas Treaty, in the next General Assembly of the United Nations to be held in September. He said that the ministry would establish a dedicated institutional mechanism to oversee the developments regarding the agreement. Srivastav said that there is a need for detailed discussion and modification to existing legislation to ensure compatibility with the requirements for the effective implementation of the treaty. Our next update is from Hyderabad. A novel single-strain oral cholera vaccine, OCV, has been launched today in Hyderabad by the Bharat Biotech International Limited. The Hilcol was developed by Bharat Biotech and a license from Hillman Laboratories, funded by Merck USA and Wellcome Trust UK. Speaking on the occasion, Bharat Biotech Executive Director Dr. Krishna Ella said, vaccines provide the best intervention to prevent, limit and control cholera outbreaks. He said his goal is a success story of partnership leading to public health solutions. He added that their new large-scale production facilities in Hyderabad and Bhubaneswar will significantly enhance the production and supply capabilities for the OCV as part of their efforts to combat cholera globally. Global statistics suggest that there is a deficit of about 40 million doses of OCV worldwide, as there is only one manufacturer who supplies them. Now let's talk about Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah informed Suman Berry, the Vice Chairman of Niti Aayog in Bengaluru, that his government launched 5 guarantees that provide direct income support to over 12 million families through direct benefit transfer. Addressing a meeting in Bengaluru yesterday, the Chief Minister said that Grihalakshmi guarantee provides 2,000 rupees to the women head of a family, Grihajyoti provides free domestic power to 14 million households, Annabhagya provides 10 kgs grain per person for free. Under Shakti program, women can travel free in the public transport buses, and under Yuva Nidhi, 3,000 rupees is provided to unemployed graduates for a period of 2 years. The government is spending 52,000 crore rupees annually for these 5 guarantees. The Chief Minister expressed his commitment to work together with all the stakeholders to achieve common goals for a positive impact on the lives of the citizens. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Akarshita will share the details and updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Aaiye jante hain sabse pehle Delhi ki khabrein. भारतीय रंगमंच में अपने 60 वर्षों के योगदान का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा राजधानी में रंग षष्ठी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में देश के प्रसिद्ध लेखकों और नाटककारों द्वारा लिखे गए नाटकों का उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। इसके अलावा एनएसडी के पुराने छात्र और जाने माने फिल्मी कलाकार द्वारा अलग अलग विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये उत्सव 9 सितंबर तक चलेगा। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने चंद्रयान 3, मंगल मिशन और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर आधारित मॉडल पेश किए। इसके अलावा छात्राओं ने मंगल ग्रह पर जीवन को दर्शाती एक पेंटिंग और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के सम्मान में एक कविता की भी प्रस्तुति की। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने जल जमाव की समस्या को दूर करने के मद्देनजर रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर और उसके आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी उनके साथ रहे। निरीक्षण के बाद मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा सड़क के आसपास मौजूद पानी निकासी प्रणाली को प्रति घंटा 100 मिलीमीटर बारिश के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए। वहीं राजधानी के आशा किरण आश्रय गृह में पिछले दिनों हुई 14 लोगों की मौत पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आश्रय गृह में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण यह हादसा हुआ था। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस आश्रय गृह में डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अधीन आने वाले सेवा विभाग ने अपना कार्य नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय लगातार गलत बयान जारी कर रहा है। और आइए अब जानते हैं मुंबई की खबरें। महाराष्ट्र सरकार ने आशा स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करते समय दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तथा विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ तानाजी सावंत ने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके लिए हर साल 1.05 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आगामी सत्र में पूरक मांग के माध्यम से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। वहीं मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई और अयोध्या के बीच 2 विशेष ट्रेन सेवाओं ट्रेन संख्या 0101 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन सेवाओं से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। ये ट्रेनें विशेष कल्याण, इगतपुरी, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों पर रुकेंगी। मध्य रेलवे ने जानकारी दी है कि यात्री सभी कम्प्यूटरकृत आरक्षण केंद्रों और आधिकारिक आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी सीटें आरक्षित कर सकते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी प्रबंधन के सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान ने मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत हर पंचायत में 2 लाख डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोरीवली मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपने कैप्टिवेटिव वाइल्ड एनिमल कार्यक्रम से पशु प्रेमियों को एक अनूठा मौका दे रहा है। ये पहल पशु प्रेमियों को बाघ, तेंदुआ, शेर, नीला बैल या हिरण जैसे जंगली जानवरों को गोद लेने और उनकी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। अधिकारियों ने बताया है कि ये वित्तीय सहायता बाड़े के रखरखाव और पशु चिकित्सा देखभाल गतिविधियों जैसे आवश्यक पहलुओं को कवर करने में मदद करेगी, जिससे इन जानवरों की देखभाल की जा सकेगी। और आइए अब जानते हैं कोलकाता की खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने आज बांग्ला बंद बुलाया है। ये हड़ताल मंगलवार को नबन्ना अभियान के दौरान पुलिस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में बुलाई गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नबन्ना अभियान बुलाया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सरकारी और गैर सरकारी बसें और फेरी सेवाएं जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी द्वारा बुलाए गए बांग्ला बंद को मान्यता नहीं दी है। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की आशंका है। वहीं कोलकाता में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं।
वेल, इट्स मच द सेम इन अदर सिटीज ऑल्सो, द लाइट रेन एंड जनरली क्लाउडी स्काई।
ट्रू।
चेन्नई इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु अगेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky again with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius and a maximum of 34 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। 28 अगस्त यानी आज का दिन ही 1914 में भीषण महायुद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, जापान और अमेरिका से युद्ध किया था।
इन द ईयर 1972 जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड। इट वॉज द नेशनलाइजेशन ऑफ 107 इंश्योरेंस कंपनीज इनटू वन मेन कंपनी कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स 4 सब्सिडियरी कंपनीज विद एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर ट्रांजैक्टिंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस।
और आज के दिन ही 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छपा। और 1922 में आज के दिन ही जापान साइबेरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुआ।
इन द ईयर 1973 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड एन अकॉर्ड पेविंग वे फॉर द रिलीज ऑफ 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इट अलाउड द रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड इंटर्न ऑफिशियल्स हेल्ड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आफ्टर द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर।
और आज के दिन ही 1972 में सामान्य बीमा कारोबार विधेयक पारित हुआ और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
इन द ईयर 1976 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन सेकेंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन मॉरिशस।
और आज के दिन ही 1990 में इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया।
इंडिया 1997 इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दैट नो कन्विक्टेड पर्सन विल बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इवन इफ एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन वाज पेंडिंग इन हाई कोर्ट दिस बैन डज नॉट अप्लाई टू अ कैंडिडेट अंडरगोइंग अ क्रिमिनल ट्रायल इट ओनली डिसक्वालीफाइज इलेक्टोरल कैंडिडेट्स वंस दे आर कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल चार्जेस।
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज भारतीय मूर्तिकार शंखो चौधरी की पुण्यतिथि है। शंखो चौधरी ने प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैच से शिक्षा ग्रहण की थी, जिनसे वे पेरिस में मिले थे। शंखो चौधरी के मूर्तिशिल्प के विषयों में महिला आकृति और वन्य जीवन शामिल है। उन्होंने मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला में काम किया था। उन्होंने लकड़ी, धातु, टेराकोटा, प्रस्तर, काला और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। उनकी मूर्ति शिल्प में वर्काकार रूप प्रदान कर उनको जीवंत बनाने का प्रयत्न हुआ है और आज ही वेद, वेदांग, संस्कृत, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के विद्वान कपिल देव द्विवेदी की पुण्यतिथि है। उन्होंने इन विषयों पर 75 से अधिक ग्रंथ लिखे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया तथा 6 महीने तक जेल में रहे। कपिल देव द्विवेदी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से अलंकृत किया। कपिल देव द्विवेदी की गणना विश्व के प्रमुख भाषाविदों और वेद विदों में की जाती है। वे संस्कृति के सरलीकरण पद्धति के उन्नायक एवं प्रवर्तन माने जाते हैं और संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में भारत में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शगुन,
राइट। एंड वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग चैडविक बोजमैन। He was an American actor. His first major role was on the NBC drama Persons Unknown, and he landed his breakthrough role as baseball player Jackie Robinson in 42. He continued to portray historical figures starring singer James Brown in Get On Up and as Thurgood Marshall in Marshall. Bozeman achieved international fame for playing the Marvel comic superhero Black Panther in the Marvel Cinematic Universe, MCU, from the year 2016 to 2019. Now let's listen to this dialogue consisting of just 2 words, but 2 very impactful words.
किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्नो इश्क धोखा है सब मगर फिर भी। अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। जी हां, आज उर्दू के जाने माने शायर फिराक गोरखपुरी की जयंती है। उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। वे आजादी के दौरान गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए और जेल भी गए। उन्होंने पंडित नेहरू के सहायक के रूप में कांग्रेस का कामकाज भी देखा। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गुल ए नगमा, रूहे कायनात, मशल, रुबाई, शबस्तान, सरगम, बज्म ए जिंदगी, रंग ए शायरी, परछाइयां, तरान ए इश्क आदि। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग चार्ल्स थॉमस जैक्सन, फिजिशियन एंड साइंटिस्ट। He had his hand in many different fields throughout his life, including chemistry, mineralogy, and geology. In fact, he served as state geologist for several states. However, most notably, Jackson played an active role in the discovery of ether as an anesthetic, the invention of the telegraph, and geological surveys conducted both domestically and internationally.
आज भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां की जयंती है। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता है। और शगुन हम जानते हैं कि जब भी हम सितार या कुछ भी सुनते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि ये जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, लेकिन ये खास बात ये थी विलायत खान जी की कि जब इनके शास्त्रीय संगीत जब इनका बजता था या जब ये अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई गा भी रहा है साथ में.
व्हेन ही यूज्ड टू परफॉर्म
जी. और उस्ताद विलायत खान की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रही थी. उनके पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे थे. उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताब ए सितार का सम्मान दिया था. ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे. आइए सुनते हैं उनका ये सितार वादन.
Well, we are also remembering Shivram Chakraborty, Indian writer and humorist. His best-known short stories and novels are renowned for their unique use of alliteration, play of words, and ironic humor. He also wrote poems, plays, non-fiction and novels, namely The Merry Adventures of Harshavardhan and Govardhan, Aaj O Agami Kaal, a collection of short stories, Bari Theke Paliye, a novel, Debutar Jonmo, Birth of God, which is a short story. Well, today we are also remembering Ivor Gurney. He was an English poet and composer, particularly of songs. Gurney's work include Best Poems and The Book of Five Makings, Seven in Psalm and War's Embers, 80 Poems or So, Rewards of Wonder, Poems of London, Cotswold and France, and collected poems. He's best known also for his musical compositions. And listeners, you're listening to this composition, A Gloucestershire Rhapsody.
आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष एमजीके मेनन की जयंती है. प्रोफेसर मेनन ने ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष अन्वेषण किया है और विशेषकर प्राथमिक कणों की उच्च ऊर्जा परस्पर क्रिया के लिए वे विख्यात हैं. उन्होंने किरणों कण भौतिकी में वैज्ञानिक कार्य किए हैं. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शिरोमणि पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.
Well, today it's also the birthday of film director David Fincher. He made his feature film debut with Alien 3 and gained his breakthrough with the movie 7. He has since directed other movies also, namely The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl and The Killer. He received nominations for the Academy Award for Best Director for the dramas The Curious Case of Benjamin Button, The Social Network and Mank. And listeners, for you, we have this theme from this movie, The Curious Case of Benjamin Button, The Aquarium.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much for tuning in. Have a superb day.
Namaskar. Namaskar.